તારીખ 4/5/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 86 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 478
પત્રાંક 86 ચલતા હૈ ઉપર જે આપકા દૂસરા જે ચલા હૈ લાવ કર के धर्म के दूसरे सब साधनों को भाव करके सर्वप्रथम जीव को अनंत काल से चलता हुआ परिभ्रमण की निवृत्ति कैसे हो इसकी खोज करनी है। जिन मार्ग है वो जन्म मरण को मिटाने का मार्ग है, मार्ग कहो या उपाय कहो, इलाज कहो, यह इलाज हमको ढूंढना है। हम यह इलाज नहीं ढूंढ करके कोई भी धर्म साधन करेंगे तो उस धर्म साधन से हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। यह वचनामृत कृपालु देव ने अपने अनुभव से लिखे हुए हैं कि हमको भी जब ऐसा हुआ, हमारे परिभ्रमण की चिंता जब हमको हुई, तभी हमको मार्ग खोजने की सही वृत्ति आई और तभी हम इस मार्ग में पहुंचने के लिए सक्षम हुए। इसका कारण खोजने को जाएं तो वो विषय कृपालु देव ने 83 नंबर के पत्र में लिखा है। उसमें वो लिखते हैं कि जीव वर्तमान उदय की चिंता में घिरा हुआ है और उस घिरावे में रहकर के वो अनेक प्रकार का धर्म साधन कर रहा है। इसका माथा तो फंसा हुआ है उदय की चिंता में और हाथ पैर से प्रवृत्ति करता है जन्म मरण से छूटने के। माथा तो फंसा हुआ है, माथा निकलेगा नहीं, हाथ पर कितना भी हल्ला ले तो सफलता नहीं मिलेगी। संसार में परिभ्रमण करने वाले सभी आत्माओं की यही हालत है, अपने उदय की चिंता करते हैं, वर्तमान उदय की और भावी परिस्थिति की कि हमारे जीवन में सब प्रकार की अनुकूलता बनी रहे, कोई कठिनाइयां नहीं आए। इसके लिए अभी से हमको क्या क्या प्रोविजन करना है, निवृत्ति लेना है तो भी प्रोविजन रख करके हमें लेना है। क्या कि हमारे निवृत्ति के काल में हमने कोई हमको कोई कठिनाई ना नहीं हो तो हम निवृत्ति ले। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं हो तो हम निवृत्ति नहीं ले सकते। निवृत्ति नहीं ले सकते इसका मतलब कि हम आत्मकल्याण नहीं कर सकते। हमारे संयोग हमारी कल्पना के अनुसार संतोषकारक हो जाए तो हम आत्मकल्याण के लिए निवृत्ति ले, वरना हम नहीं ले सकते। और इस प्रकार से बहुत बहुत बार हमने निवृत्ति ली, बहुत भाग लोगों ने भी लिया लेकिन कोई सफल नहीं हुए। इसलिए तैयारी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हर हालत में हमें आत्मकल्याण कर लेना है। कोई भी परिस्थिति हो आत्मकल्याण से वंचित नहीं रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। उतनी हमारी अभिप्राय की तैयारी परिस्थिति में हमारा काम चलेगा, वरना हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमारी चिंता नहीं छूटती है। कोई भी संपन्न आदमी हो, कितना भी संपन्न हो, संयोग की चिंता क्यों करता है? उसको क्यों संयोग की चिंता होती है? कि आधार बुद्धि और सुख बुद्धि वहां है, संयोग की आधार बुद्धि है और सुख बुद्धि है कि नहीं है? आप देख लो, है कि नहीं है? कि है, इसलिए इसका विकल्प चलेगा चलेगा चलेगा, इसकी चिंता होगी होगी और होगी ही। इस परिस्थिति में क्या किया जाए? अब इलाज हमको ढूंढना है। तो कृपालु देव ने कृपा करके यहां पर इस पत्र में इसका इलाज दिया है कि तुम चिंता में खड़े हो ना, तू चिंता से घिरा हुआ है, हमको मालूम है। अब तुम्हारी चिंता को ट्रांसफर करो, तुम्हारा जो उदय का विषय का जो चिंता है वो तो मामूली बात है, इससे बड़ी बात तो जन्म मरण के परिभ्रमण की होती है। पशु योनि में चला जाएगा, बहुत दुख भोगेगा, इसकी तुमको चिंता नहीं होती है। जो बड़ा दुख का कारण है इसकी तो चिंता होती नहीं, और छोटे मोटे कारण की चिंता में तुम फंस जाते हो, और बड़ा जो चिंता का कारण है उसका इलाज तुमको मिलता नहीं। इसलिए हमको परिभ्रमण का दुख क्या है, कितना होगा, ये बात जहां तक हमको उसकी चिंता नहीं हुए, उसकी जीव जुड़ना नहीं हुए, वहां तक इस बात को हमें छोड़ना नहीं है और दूसरा धर्म साधन करना नहीं है। मनाई किया है कृपालु देव ने कि दूसरे सब विकल्प दूर करके, किसका विकल्प? धर्म साधन का विकल्प, कि हम शास्त्र पढ़ लें, हम पूजा भक्ति कर लें, कुछ तो करें कि नहीं, कुछ मत करो, पहले ये चिंतना में आओ, तभी रास्ता मिलेगा, इसके पहला सही इलाज नहीं मिलेगा। तो चिंता को दूसरी चिंता में ट्रांसफर करना है, और वास्तविकता मालूम पड़ते ही सहज हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा? कि हमको एक मामूली फुंसी हुई, फुंसी गुजराती में आपने शू कही फोड़ की, हिंदी में फुंसी कहते हैं, आपने फोड़ की कही से, सामान्य फुंसी का दर्द तो होता है और हमारा उपयोग वहां लगा रहता है, लेकिन इसी चिंता में एक गले में कैंसर की गांठ निकल जाए तो फुंसी की चिंता करोगे या नहीं करोगे? कि फुंसी की चिंता छूट जाएगी। ऐसे हम संयोग के पीछे पूरा जीवन बिता रहे हैं, पूरा जीवन खर्च कर रहे हैं, क्या सारा जीवन हम खर्च कर रहे हैं सिर्फ संयोग की चिंता में? तो कहते हैं कि परिभ्रमण की चिंता को तो देखो, तुम्हारा ये चिंता छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? कि इसका एक बहुत बढ़िया समाधान है कि जो भी वर्तमान में और भविष्य में जो भी होने वाला है वो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार होने वाला है। चाहे तुम कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी छटपटाओ अपना संयोग को ठीक करने के लिए, हाँ, प्रारब्ध को बदल सकते नहीं है। क्या बुद्धिमान लोग फेल नहीं जाते? हाँ, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बुद्धि वाला आदमी है, क्या वो अपने जीवन में निष्फल नहीं जाता संयोग की चिंता करते करते? एक आदमी को दुकान थी, दो दरवाजे वाले थे, एक गेट नहीं था, दो दो गेट था, लेकिन लक्ष्मी नहीं आ रही थी, उसका प्रारब्ध का योग नहीं था। फिर उसने दोनों भी गेट बंद कर दिया और जब लक्ष्मी को आना था तो छप्पर फाड़ के आई थी। गेट खुला रखा तब नहीं आई और बंद कर दिया तो छप्पर फाड़ के आई। बनता है कि नहीं बनता है? हाँ? तो हमको प्रारब्ध की चिंता करने की वैसी ही जरूरत नहीं है। पूर्व प्रारब्ध पर भरोसा रख करके हम परिभ्रमण की चिंता में लगेंगे तो अवश्य छूटने का मार्ग मिलेगा। ये विषय गारंटेड है, ये बात गारंटेड है। बाहर में प्रयत्न करो तो भी निष्फलता आ सकती है। पारमार्थिक मार्ग में, आत्मकल्याण के मार्ग में प्रयत्न करने वाले को कभी निष्फलता नहीं मिलती। ये अनंत ज्ञानियों का प्रॉमिस है। क्या वचनबद्ध है ज्ञानी कि तुम हमारे पर भरोसा करो, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन सही परिभ्रमण की चिंता करो, दूसरा सब विकल्प को छोड़ करके। ये सारा जो दो दिन से पहला पैराग्राफ चला उनका जो समरी सारांश है वहां इस विषय का। अब आगे क्या कहते हैं कि जीव को संसार में रहना और मोक्ष कहना यह होना असुलभ है। हमारा अभिप्राय में हमको संसार के संयोग, संसार के पदार्थ प्रिय है और हमें मोक्ष भी जाना है। जिन जिन पदार्थों का प्रतिबंध है वो प्रतिबंध हमें छोड़ना भी नहीं और हमें मोक्ष में जाना है। ये बात बनने वाली नहीं है। एक म्यान में दो तलवार समाती नहीं और दो घोड़े की सवारी कोई कर सकते हैं? नहीं है, गिर जाएंगे। इसलिए जिसको मुक्त होना हो उनको अपनी आत्मा को टटोल करके पहले पक्का कर लेना चाहिए कि तुमको मोक्ष होना है, वाकई मोक्ष होना है। ईमानदारी से मुक्त होना है क्या? आत्मकल्याण में भी अगर ईमानदारी नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, तो और कहां ईमानदारी रहेगी? नहीं, व्यवहार में तो हम बहुत ईमानदार है, हम मानने वाले नहीं है। अपने आत्मकल्याण में जो ईमानदार नहीं है वो व्यवहार में ईमानदार 100% रह सकता हो सकता हो? वो बात मानने लायक है ही नहीं। इसलिए ये बात की जांच तलाश हमको करनी होगी कि वाक्य ही हमें छूटना है या नहीं छूटना है। हमें छूटना है तो संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है हमें बांध सके। छूटने वाले को कोई बांध सकता नहीं है और जिसको स्वयं बंधाना है उसको कोई छुड़ा सकते भी नहीं है। जितनी भी जिम्मेदारी हो, एक समय में आयु खत्म हो जाएगा, क्या होगा जिम्मेदारी का बताइए आप? आयु पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कभी भी? हाँ, फिर क्या होगा जिम्मेदारी का? क्या होगा? और जो जो मनुष्य अज्ञान दशा में मृत्यु के प्राप्त हुआ उनको पूछो कि आपकी सब जिम्मेवारी पूरी होगी बाद मृत्यु आई या इसके पहले आई, तो सब ऐसा कहेंगे कि इसके पहले ही जाना पड़ा। किसी की समस्या कभी पूरी होती ही नहीं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, खुद ही खड़ा करता है अपनी समस्या, खुद ही खड़ा करता है, यही हालत है। ऐसे घर गृहस्थी नहीं बसा के भी अनंत बार संसार में रहे, इसका क्या करेंगे। और अभी भी त्यागी लोग पूरे संसारी है कि नहीं है, ये सब बानाबाजी है, ये सब बानाबाजी है, नियत ठीक नहीं है। जिसको आत्मकल्याण करना है वो हर हालत में कर सकते हैं। और हमारे यहां तो ये जीवंत दृष्टांत है पूज्य सोगानी जी का। जब उसको आत्मकल्याण की भावना तीव्र हुई तो परिवार और बिजनेस दोनों जिम्मेवारी जो थी उस पर उसका ध्यान निकल गया, ध्यान छूट गया। और ऐसी परिस्थिति में आए कि बिजनेस बंद करने का, दुकान को ताला लगाने के दिन आ गया और ताला लगाना भी पड़ा और परिवार को और अपने गांव को छोड़ करके कलकत्ता जाना भी पड़ा। क्या इसका आत्मकल्याण नहीं हुआ? इसे ऐसी कठिनाइयां आई तो आत्मकल्याण नहीं हुआ के हुआ? इसका मतलब क्या होता है कि हर हालत में जीव आत्मकल्याण करता है, कर सकता है, और किया उन्होंने। हाँ, बहनश्री ने 15 साल की उम्र में घर का त्याग कर दिया आत्मकल्याण के हेतु से, तो क्या वो दुखी हो गई क्या कि सुखी हुई? हाँ, संसार में सबसे सुखी वो होता है। और सोगानी जी ने भी यही लिखा कि कलकत्ता की 70 लाख की आबादी में कोई सुखी है तो मैं हूं, मैं अकेला सुखी हूं, मुझे तो सब दुखी दुखी नजर आते हैं, मैं ही अकेला सुखी हूं। और वो बात उसने अनुभव कब किया कि उसके पास व्यापार करने के लिए दुकान नहीं थी तब, और कलकत्ता में रहने के लिए किराए पर एक कोठड़ी भी नहीं थी तब। कहाँ रहते थे? धर्मशाला में रहते थे, सैनिटोरियम में रहते थे, और बदलते रहते थे, एक धर्मशाला छोड़कर के दूसरी धर्मशाला में, एक सैनिटोरियम छोड़कर के दूसरे सैनिटोरियम में, लेकिन सुखी थे। और इतना सुखी 25 लाख की गाड़ी में बैठने वाला नहीं था। सुख कहां से आता है? सुख बाहर से कहीं नहीं आता, कभी अंदर से आता है, आता है। जीवंत दृष्टांत है हमारे पास ज्ञानियों का, जीवंत दृष्टांत है। इसलिए संसार में रहना और मोक्ष होना ये कहना, ये होना असुलभ है, नहीं बन सकेगा। मैंने नियत ऐसे संसार में रहने की है, नियत है संसार के सुख की प्रियता के, और हमको मोक्ष भी जाना है, दो बात विरुद्ध है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। संसार केवल शोकमय और दुखमय है ये अभिप्राय हो जाना चाहिए। और बताइए किसी को सुख होता हो तो? एक एक संसार के जीव को ले आओ और उसको पूछो कि सुखी है? अरे देवलोक का देव भी सुख के लिए प्रयत्न करता है, ये बताता है कि वो सुखी नहीं है। पांचे इंद्रियों के विषय में से सुख लेने के लिए उसके परिणाम भी झापटा नाकते हैं, फिर भी सुख उसको नहीं मिलता है और अनित्यता के भय से सब ग्रसित है। कोई भी हो अनित्यता के भय से तो सब ग्रसित है कि कब मृत्यु आ जाएगी, कब ये हमारे अनुकूलता के संयोग छूट जाएंगे, हमको कोई निश्चय नहीं हो सकता है। जाते हैं ज्योतिष के पास कि देखिए क्या क्या है, हमारा आयुष कितना है, इसके पहले कुछ हम तैयारी कर ले। लेकिन आयुष का पता किसी को नहीं पड़ता। हमने ये देखा है कि खुद ज्योतिष जोने देखने वाले को भी अपना आयुष का पता नहीं है, दूसरे का पता कहां से निकालेगा वो, और बता दिया तो भी वो भय से और दुखी हो जाएगा, अरे रे बस उतना ही साल है मेरा, उतना ही दिन है मेरा, आपको बता दिया, चलो 6 महीने के बाद आपकी मृत्यु है, क्या होगा, अरे रे 6 महीना बस, परिणाम बिगड़ते जाएंगे। देवलोक में यही होता है, 6 महीने पहला पता चल जाता है और जूर जूर के मरते हैं, व्यथित होकर के देव मरते हैं और दुर्गति में चले जाते हैं। क्या कारण, संसार प्रिय है इसलिए। अब कृपालु देव ने जो 4 प्रकार के परिणाम होते हैं उनकी परिभाषा किया है।
ये परिणाम कैसे जीव को किस भूमिका में आते
हैं,
ये चैप्टर तो ऊपर में चला है, कौन सा के लक्ष्य के फायदे की हुई और नीचे जो परिणाम जो 4 बातें लिखी है वो किस भूमिका के योग्य जीव,
मुमुक्षु की भूमिका में से ये परिणाम चालू होते हैं। हाँ होते हैं, हो सकते हैं, डिग्री ज्यादा कम हो सकती है लेकिन हो सकते हैं।
ऐसे परिणाम हुए बिना मुमुक्षुता का प्रारंभ नहीं होता,
मुमुक्षुता में ये परिणाम आ ही जाता है। पात्रता देने वाली है कितना, 57। जूठा भाई उजमसी को लिखा हुआ पत्र है। कर्म की गति विचित्र है, निरंतर मैत्री प्रमोद करुणा और उपेक्षा में मध्यस्थता भावना रखना है, रखिएगा। 22 साल में लिख रहे हैं। मैत्री यानी सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि, यहाँ क्या सब जीवों के प्रति हित चिंतन, एक पॉजिटिव साइड दिखाया, एक मैं नेगेटिव साइड से बात किया है, बात तो मैत्री की ही बात है। मैत्री माने सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि, किसी से वैर बुद्धि नहीं। और क्यों किसी से वैर बुद्धि रखें, क्या इसकी आत्मा परमात्मा नहीं है, जिसके प्रति हम वैर बुद्धि रखें इसकी आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा के प्रति नहीं हो। हाँ कोई उसका दुष्ट परिणाम हो उसका निषेध करना, दोष का निषेध है उसमें, आत्मा का निषेध नहीं है, अनात्मा का निषेध है वो,
भी हित चिंतना
और उसमें भी हित चिंतना है कि उसका कल्याण कैसे हो। ज्ञानी भी कभी कठोर वचन से उपदेश देते हैं, अंधा है पशु है ऐसा कहेगा, करुणा है, हित बुद्धि है,
करुणा की डिग्री बढ़ती है तब ऐसे वचन।
हाँ विशेष करुणा आती है तब ऐसी बात कहते हैं। नहीं क्या प्रश्न उठाया कि ज्ञानी का ये परलक्षीपना नहीं है कि जिसको स्वलक्ष्य नहीं होता हो उनको परलक्षपणा बोला जाता है, जिनको स्वलक्ष्य होता हो उनको परलक्षपणा कैसा, उनको तो करुणा होती है, उसको तो मैत्री है, तो उसके परिणाम आएंगे ही आएंगे। जब वो पूर्ण नहीं हुए, पूर्ण वितराग नहीं हुए हैं और राग का अंश शेष रहा है तो किस किस प्रकार का राग आएगा कि दूसरे जीवों का भी कल्याण हो, ऐसा राग आए बिना नहीं रहेगा। हाँ हो सकती है, सच्ची समझ हो, मुमुक्षु की भूमिका में भी यथार्थ समझ हो तो सब जीवों के प्रति निर्वैर बुद्धि आ सकती है। किसी के प्रति वैर क्यों रखे, क्या कारण है? कोई वैर रखने का कोई कारण हो ही नहीं सकता जगत में।
वैर रखने का तो स्वयं का मान
है, और क्या है, स्वयं की कल्पना के बस कुछ भी करे, बाकी वास्तविक कोई कारण नहीं है जगत में, वो तो बता दीजिए, नहीं मिलेगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, हमको तो नहीं मिलता है, बताइए कौन सा कारण है, कोई कारण नहीं। पर्याय, हाँ हाँ, जो पर्याय मात्र को आत्मा मान लेता है उसको वैर बुद्धि हो जाती है, पर्याय बुद्धि वाले को होता है, द्रव दृष्टि वाले को हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव दृष्टि में सब परमात्मा है, यानी परमात्मा स्वरूप की मुख्यता रहती है द्रव दृष्टि में, तो द्रव स्वभाव की मुख्यता रही। ज्ञानी को तो नहीं होता है, मुमुक्षु को भी पहला मुख्यता अपना आत्म कल्याण का होता है, तभी मुमुक्षुता बराबर है, सही मुमुक्षुता तब है, यथार्थ है। अपने आत्म कल्याण को गौण करके दूसरे का हित का कोई प्रवृत्ति करता है वो यथार्थ नहीं है।
अभिप्राय की बात
पहले अभिप्राय है, बाकी प्रवृत्ति तो बाहर के संयोग अनुसार होवे और नहीं भी होवे। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो उतना जितना जितना पुण्य योग होगा उतनी प्रवृत्ति होगी ना, अभिप्राय तो हो जाएगा,
अभिप्राय
मुमुक्षु में बदल सकता है। मुमुक्षु की मुख्य भूमिका अभिप्राय बदलने की है, आचरण होवे या नहीं भी होवे, जबकि ज्ञान दशा से आचरण की प्रधानता आती है।
अभिप्राय जो तो आचरण होता है,
हाँ होता है,
होता है तो उसका
खेद खेद आता है, अभिप्राय विरुद्ध आचरण होता है तो खेद होता है, दुख लगता है अपने
अभिप्राय को चेक करने के लिए। आज जो खेद आया
वो ऐसा नहीं होता, उसका डिग्री कम हो जाएगा,
डिग्री बढ़ना चाहिए।
हाँ नास्तिक का डिग्री बढ़ना चाहिए और अभिप्राय वाला अस्ति का डिग्री बढ़ना चाहिए, ऐसी बात है,
तब वो सांगोपांग,
हाँ तब बराबर है। स्वलक्ष्य नहीं हुआ तो परलक्षीपना होगा, स्वलक्ष्य आत्मकल्याण का जिसको लक्ष्य होगा उसको परलक्ष्य नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको तो लक्ष्य है, तो वो मर्यादा में वो बात चलेगी, वो बात मर्यादा में चलेगी, मर्यादा में चलेगी, और इसका हर पहलू यथार्थ रहेगा, वरना एक पहलू में आगे बढ़ेगा, दूसरा पहलू में विपरीत जाएगा, ऐसा बनेगा। स्पष्टीकरण देवे तो कि जैसे हम आत्मकल्याण सब जीवों का हुए, इसलिए हम सद साहित्य का प्रचार करते हैं। जो वर्तना है वो अप्रभावना का कारण होगी। फिर से सत्शास्त्र, हम क्यों सत्शास्त्र छपा करके वितरण करते हैं, इसका प्रचार प्रसार क्यों करते हैं, कि धर्म की प्रभावना हो, एक पहलू अच्छा है। दूसरा पहलू क्या होगा कि हमारे वैर भाव के कारण से, निर्वैर बुद्धि नहीं होने के कारण से, हम किसी न किसी के प्रति कशिश के परिणाम रखेंगे और वो अप्रभावना का कारण बनेगा। तो उसका दोनों पहलू ठीक नहीं है, एक पहलू ठीक है, एक पहलू विपरीत है, यथार्थता में ऐसा नहीं बनता, सब पहलू यथार्थ होता है, यथार्थता में से ही सम्यक्ता आएगी, ऐसा बनता है।
एक ज्ञानी के वचनों का प्रचार करना, दूसरे ज्ञानी के वचनों का प्रचार करने के प्रवास का दबाव रखना,
कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी होगी, यथार्थता नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी होगी। बहुत से भेद प्रभेद है परिणामों के, तो वो दृष्टांत कोई भी एक लिख सकते हैं। मैत्री में जगत के सर्व जीवों के हित चिंतन और निर्वैर बुद्धि, प्रमोद माने कोई भी आत्मा के गुण देखकर हर्ष का उत्पन्न होना, गुणी जीव के प्रति उल्लास परिणाम होना, जिसको अपना गुण प्रकट करना है उसको दूसरे के गुण प्रति उल्लास और हर्ष के परिणाम आए बिना रहेगा, वहां मात्सर्य नहीं होगा। बहुभाग क्या होता है कि हम तो रहे पुराने मुमुक्षु और कोई नया मुमुक्षु आगे बढ़ता है तो इसकी ईर्ष्या हो जाती है। ये बताता है कि हमको गुण प्रकट करना नहीं है, आज आने वाला आगे हो सकता है और 25-50 साल वाला पीछे हो सकता है, ये मार्ग स्वतंत्रता। इसलिए कोई भी जीव कैसा भी हो, इसके गुण देख करके हमको प्रमोद आना ही चाहिए। हाँ पहले दिन काम कर लिया, हाँ पढ़ रहे हैं तो पढ़े रहे, देखो मारे उसकी तलवार है, धर्म तो ऐसी चीज है, मारे उसकी तलवार, भीत पर लटकती है, हाथ में लेकर के उपयोग करे उसकी हो गई वो। हर्ष होना, उल्लास होना, प्रमोदित होना, राजी होना, खुशी होना, और इसका बहुमान करना, बहुमान करना। करुणा यानी संसार ताप से दुखी आत्मा के प्रति कोई भी जीव जन्म मरण से मुक्त हो ऐसा प्रयत्न करना, या संसार में जो दुखी हो रहे हैं वो संसार दुख से कैसे मुक्त हो जाए ऐसी भावना रखना, इसको अनुकंपा कहते हैं, दूसरे जीव के प्रति अनुकंपा कहते हैं। नहीं, मुमुक्षु को भी होता है, ये मुमुक्षु की भूमिका की तो बात चल रही है।